मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 29 नवंबर 2018 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों फिलहाल हम लोग विचार पर बातें कर रहे हैं और काफी विस्तार के साथ बातें कर रहे हैं, तो आज भी मैंने इसी विषय को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा है और आज मैं इसके कुछ और भी अधिक व्यावहारिक पक्ष के बारे में आपसे बातें करने जा रहा हूं। देखिए हालांकि इससे पहले भी मैंने जो बातें की हैं, हो सकता है कि सुनने के बाद आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि मेरी बातें सैद्धांतिक ज्यादा हैं, यानी कि फिलोसॉफिकल ज्यादा हैं, व्यावहारिक कम है। बहुत जगह आपने महसूस किया हो कि बातें समझ में नहीं आ रही हैं और अगर समझ में आ भी रही हैं तो हम इसे अपने ऊपर लागू कैसे करें। लेकिन दोस्तों मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि भले ही मेरी बातें सैद्धांतिक क्यों न रही हों, लेकिन मेरी कोशिश रही है कि मैं अपनी बात को अधिक से अधिक व्यावहारिक धरातल पर रखकर आपको बता सकूं। मैंने जो कॉन्शस सबकॉन्शस और अनकॉन्शस माइंड के बारे में आपसे चर्चा की है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप उन तीनों मनों के स्तरों को ध्यान में रखकर खुद का मूल्यांकन करने में थोड़ा वक्त लगाएंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत से अपने विचारों की सच्चाइयां पकड़ में आ जाएंगी। आपको अपने व्यवहार की प्रैक्टिकलिटी के बारे में पता चलेगा कि मैं ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा हूं, उसके पीछे क्या कारण है, ये सारी बातें आपके समझ में आ जाएंगी। और मुझे लगता है कि जैसे ही हमें ये बातें समझ में आती हैं, आप समझ लीजिए कि आप अपनी समस्या के जड़ तक पहुंच गए हैं। और देखिए यदि आपको जड़ पता लग गई और आप उससे मुक्त होना चाहते हैं, उस व्यवहार से उस विचार से, तो बट नेचुरल है कि आप जड़ को उखाड़ कर फेंक दीजिए, हमेशा हमेशा के लिए आप उससे मुक्त हो जाएंगे। अदरवाइज तो फिर हम पत्तों की सफाई करते रहेंगे, पत्ते साफ हो जाएंगे, हो सकता है कि पीले पड़कर झड़ भी जाएं, लेकिन ये तो पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि पत्ते फिर से आएंगे, यानी कि हम जिंदगी भर उन समस्याओं को झेलते रहेंगे। तो दोस्तों उसी के संदर्भ में मैं आज आपसे कुछ और बातें करने जा रहा हूं। देखिए हम सब जीवन को लगभग 60-70 साल तक जीते हैं। आपने अपने आसपास बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा, दो तरह के लोगों को देखा होगा। पहले तो वे लोग हैं जो जिंदगी भर काम कर रहे हैं लेकिन उनके जीवन में कोई बहुत बड़ी तब्दीलियां नहीं आई हैं, बहुत बड़े परिवर्तन नहीं आए हैं। वो एक काम में लगे हुए हैं, उस काम को कर रहे हैं, तो उनका आर्थिक स्तर भी लगभग वैसा ही है और जीने का स्तर भी वैसा ही है। जीने का स्तर कहने का मतलब है परिवार के साथ संबंध, समाज में आना जाना, इसे मैं यहां जीने का स्तर की कह रहा हूं। उसमें कोई परिवर्तन आपको दिखाई नहीं देगा, राइट। कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे कि उन्होंने काम किया और काम करने के बाद उनका आर्थिक स्तर तो बहुत बेहतर हो गया, मतलब बहुत पैसे वाले हो गए, अच्छी कमाई कर ली या बहुत अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच गए, लेकिन जीवन स्तर में कोई परिवर्तन नहीं आया। वही दिमाग की परेशानियां, वही घर वालों से झगड़ा, वही समाज के साथ तूतू मैं, ढेर सारी ऐसी चीजें हो रही, मतलब वो त्रस्त हैं। बस एक ही बात है कि पैसे को मामले में वो बहुत सुखी हैं, जो चाहते हैं वो खरीद सकते हैं, जितना चाहें उतना खर्च कर सकते हैं, और क्योंकि वो आर्थिक रूप से संपन्न है तो समाज के लोग थोड़ा सा उन्हें सम्मान भी दे देते हैं। अदरवाइज जिंदगी का तौर तरीका उनका वही है, सही मायने में वो अपनी समृद्धि को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, आनंद नहीं ले पा रहे हैं, बल्कि कभी कभी तो उनको लगता है यार ये बवाल ही सिर पर आ गया है। कुछ लोग, थोड़े से लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आर्थिक रूप से तो संपन्न नहीं है, जिसे हम अपनी परिभाषा के तहत संपन्नता कहते हैं, लेकिन वो बड़ी आराम की जिंदगी जीते हैं, बड़े खुशहाल जीवन में रहते हैं, वो घर परिवार में मस्त हैं, लोगों के साथ मस्त हैं, आप और हम भी उनके साथ मिलकर के अगर दुखी हों तो मस्त हो जाते हैं और हम उनसे बार बार मिलना चाहते हैं, लेकिन ऐसों की संख्या बहुत कम है। दोस्तों इसके पीछे कारण क्या है? क्या कोई बहुत बड़ा कारण है, या कह लीजिए कि इसका कोई बहुत बड़ा रहस्य है? कोई बड़ा रहस्य नहीं है, बहुत ही सामान्य सी चीज है और दुर्भाग्यजनक बात यह है जो इस फील्ड में काम करते हुए, खासकर अगर मैं जीवन प्रबंधन की स्पेशली फील्ड की बात करूं तो दोस्तों मुझे लगभग 25 साल तो हो गए हैं, मैंने ये महसूस किया है कि खासकर एक ऐसे समाज के लोगों को या ऐसे देश के लोगों को, राष्ट्र के लोगों को समझा पाना बड़ा मुश्किल काम होता है जो आत्मवादी होते हैं, यानी कि जो सब कुछ आत्मा को ही मानते हैं। आत्मवादी होना बुरी चीज नहीं है क्योंकि उसमें भावनाएं भी होती हैं और उसका अपना महत्व तो है। आत्मवादी होने को मैं इस रूप में यहां ले रहा हूं, जो भाग्यवादी होते हैं, ज्यादा अच्छा होगा कि भाग्यवादी शब्द का इस्तेमाल किया जाए, जो किस्मत को सब कुछ मानते हैं, भाग्य को सब कुछ मानते हैं। तो सीधी सी बात है कि अगर भाग्य ही सब कुछ है तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो हम लिखा कर लाए हैं वही चीजें धीरे 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 होती चली जाएंगी। हमने तो अपने आप को सरेंडर कर दिया, तो जब सरेंडर कर दिया तो अगर कोई भी किसी से कोई बात कहता है कि देखो तुम ये करो, इस तरीके से सोचो, तो बट नेचुरली कि वो यही सोचेगा कि करने से क्या फायदा, क्योंकि वो तो सब कुछ लिखा हुआ है और लिखे हुए को कोई मेट नहीं सकता, तो फिर वो करने पर नहीं आएगा, सुनने पर आ जाएगा, अपनी समस्या भी लेकर के जाएगा, डिस्कस भी करेगा, सुन भी लेगा, लेकिन उसे करेगा नहीं। तो मित्रों, खासकर ऐसे समाज के लोगों को जो भाग्य पर भरोसा करते हैं वैज्ञानिक तरीके से और विचारों के बारे में बताकर समझा पाना बहुत मुश्किल काम होता है, और इनफैक्ट सच पूछे तो उसी मुश्किल काम को पिछले कुछ एपिसोड से मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूं। पता नहीं आप सब मेरी इन बातों पर कितना यकीन कर पाएंगे, और यकीन कर भी लेंगे तो पता नहीं उसे कितना उपयोग में लाएंगे, इसके बारे में मैं आशंकित जरूर हूं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि नहीं, मुझे जो सही लगता है मुझे वह बात आप लोगों तक पहुंचानी ही चाहिए। दरअसल ये जिंदगी के जो अभी मैंने आपको तीन तरह के स्वरूप बताए हैं, इनमें जो अंतर है उसका जो मूल कारण मुझे जो लगता है फ्रेंड्स वह है विचार। ये तीनों जो लोग हैं उनके विचार बिल्कुल अलग अलग हैं, और जिस तरीके के उनके विचार हैं उसी तरीके का उनका जीवन है। मतलब मैं तो कम से कम ये मानकर चलता हूं, गौतम गीता एक बहुत प्रसिद्ध रचना है, उसमें सीधे सीधे लिखा गया है विचारा ही मनुष्याणाम, मतलब विचार ही मनुष्य के प्रतिनिधि हैं या मनुष्य हैं। आगे है जिस मनुष्य के जैसे विचार होते हैं वह वैसा ही होता है। विचारा ही मनुष्याणाम प्रतिमाना परंतप विचारो यादृश्यो यस्य मर्त्यो मर्वात तादृश। सीधी सी बात है कि जिसके जैसे विचार होते हैं वह उसी के सदृश होता है। इन लोगों के साथ संकट क्या हो रहा है मित्रों? संकट ये हो रहा है कि बाकी क्षेत्रों में तो उन्होंने खूब काम किया है और वहां खूब तब्दीलियां भी हो गई, खूब परिवर्तन हो गए हैं। अभी तक साइकिल थी तो वहां कार आ गई है, छोटा सा मकान था तो वहां महल बन गया है, पहले साधारण कपड़े पहने जाते थे अब बहुत अच्छे कपड़े पहने जा रहे हैं, छोटी छोटी कुर्सियों की जगह बड़े बड़े सोफा सेट्स आ गए हैं। सभी चीजों में बदलाव हो गया है, सभी चीजों में, साबुन तेल से लेकर के कपड़े, सभी चीजों में बदलाव हो गया है। अगर नहीं हुआ है तो सिर्फ एक चीज में नहीं हुआ है, और वह कौन सी चीज है आप समझ सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो जब उसी चीज में बदलाव नहीं हुआ है तो स्वाभाविक है कि जीवन में बदलाव कैसे होगा, आप बताइए। उदाहरण के तौर पर चलिए इससे आप समझ लीजिए कि जब हम छोटे से बच्चे होते हैं, 6 महीने साल भर के होते हैं, तो हमारे माता पिता अभिभावक हमें तरह तरह के रंग बिरंगे कपड़े पहनाते हैं, कोई झबला पहना देगा, कोई कुछ पहना देगा, लड़का है तो लड़कियों की ड्रेस, लड़कियां हैं तो लड़कों के ड्रेस, वो खरीद खरीद के सुंदर रंगीले चमकीले ड्रेस लाते हैं जो उन्हें अच्छे लगते हैं और हमें पहना देते हैं, और हम पहन लेते हैं, खुश रहते हैं। पता नहीं खुश रहते हैं कि नहीं, शायद उस समय खुशी क्या होती हम जानते नहीं, क्योंकि हर चीज में हमें खुशी महसूस होती है तो इसमें भी महसूस हो रही है। देखिए बच्चा तो हर चीज में खुश रहता है, केवल बस उसे भूख लगती है तो रोता है, चोट लगती है तो रोता है, अदरवाइज तो वो खुश ही खुश है ना। तो वो बहुत अच्छी ड्रेस है, बहुत प्यारी ड्रेस है और सुंदर ड्रेस है और फटी भी नहीं है, क्योंकि हम बहुत जल्दी बड़े हो गए हैं। अब मैं 2 साल का हो गया और मेरे माता पिता अभिभावक ये चाहते कि नहीं ये ड्रेस बहुत अच्छी है और मैं तो इसे ही पहनाऊंगी क्योंकि ये बहुत अच्छी ड्रेस है, फटी भी नहीं है, बहुत महंगी भी है और बहुत सुंदर भी लगती है। राइट, अब उन्होंने वो ड्रेस मुझको पहना दी, फंसा फंसा के पहना दी। जब मैं 6 महीने का था तब तो वो ड्रेस मुझ पर फिट बैठती थी, ढीला ढाला ठीक ठाक लगता था। अब मैं थोड़ा सा मोटा हो गया हूं, बड़ा भी हो गया हूं, तो वह ड्रेस फंस रही है। उसको पहनने के बाद मुझे अड़चन हो रही है और उस अड़चन के कारण मैं रो रहा हूं और मेरे माता पिता कह रहे हैं कि देखो ये कैसा है, ये रो रहा है। पहले तो ये खुश होता था, अब ये रोने लगा, अब इसको ये ड्रेस खराब लगने लगी, ये कोई बात हुई। बस मित्रों, कुल मिलाकर यही है कि शरीर बढ़ गया है लेकिन ड्रेस वही है, धन आ गया है, पद आ गया है, समय बदल गया है लेकिन विचार वही है। तो अब आप बताइए कि वो विचार अब इस समय और इन परिवर्तनों के साथ कैसे मैच करेगा। उसके शरीर पर तो ये विचार फिट नहीं हो रहे हैं, तो फिर कैसे बात बनेगी, आप खुद सोच करके देखिए दोस्तों। तो आज के इस लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही, बाद में फिर हम लोग और बातें करेंगे। अब आप सबसे सादर अनुमति चाहूंगा, नमस्कार।